ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हमें बार बार एक ही बात याद दिलाई है। कौन सी? तुम बच्चे क्या बन रहे हो। भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने हमें समझाया है, तुम ब्राह्मण संप्रदाय से देवता संप्रदाय बन रहे हो, तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, तुम मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक के देवता बन रहे हो, सदा अमर बन रहे हो। तो आज बाबा ने विशेष नशा भी चढ़ाया है और याद भी दिलाया। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम सतयुग के मालिक बन रहे हैं, नहीं, परंतु सतयुग में विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये सतयुग के मालिक की तो बात ही नहीं है, कोई युग के मालिक थोड़ी बनते हैं, लेकिन विश्व के मालिक बनते हैं। तो आज बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से हम बच्चों को हमारे लक्ष्य की याद दिलाई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 11/12/2025 है। मीठे बच्चे, संगम युग पर तू ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। अभी हम क्या है वो भी बाबा याद दिलाते हैं ना। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, अब तुम्हें मृत्यु लोक से मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। सदा ये याद रहे, आज तो विशेष याद रहे, सद्गुरुवार के दिन बाबा हमें क्या बना रहे हैं, मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। हम हद के सन्यासी नहीं है, घरवार नहीं छोड़ते हैं, पर बेहद के सन्यासी है। लेकिन किस नॉलेज को समझने से बेहद के काम सन्यास करते हैं। तो तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का सन्यास करते हो। हाँ, क्या होगा, कौन सा नॉलेज? बाबा तो बहुत नॉलेज देते हैं, लेकिन जिससे हम बेहद का संन्यास करते हैं वो कौन सी नॉलेज? तो उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। अब ड्रामा की नॉलेज से बेहद का संन्यास कैसे है तो वो बाबा बताते हैं। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार अभी सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। ड्रामा अनुसार जानते हो ना, कलह पहले भी हुआ है, इसलिए कोई नई बात नहीं होनी है। तो तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अभी सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया, हाँ, क्या क्या जानने से कैसे हमको बेहद का संन्यास हम करते हैं। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वो हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है, इसीलिए सहज हो जाता है बेहद का संन्यास। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है, कुछ नया भी नहीं जोड़ना है, बस जो है उसको निभाना है और अंदर से उपराम। तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, हाँ बहुत सुंदर गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। बहुत सुंदर ये गीत है। तो हम कौन हैं? आने वाले कल की हम तस्वीर हैं, क्योंकि देवता बन रहे हैं। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तो कितनी ऊंची तकदीर हम अपनी भी बना रहे हैं, तो दुनिया की भी तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। अब बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हम न अमर लोक में बैठे हैं, न मृत्यु लोक में बैठे हैं, हम तो संगम युग पर बैठे हैं। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों को? आत्म अभिमानी हो बैठो, क्योंकि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, तो आत्म अभिमानी होके बैठो। ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाबा बार बार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु, हाँ लक्ष्मी नारायण ये एम ऑब्जेक्ट है, या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। जब लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बाबा कहते समझाओ, ये कहो, हम ये बन रहे हैं मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता। ऐसी पढ़ाई तो कभी ना कभी कभी कानों से ही नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी इन कानों से, न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। कोई नहीं साधु संत महात्मा ऐसे कहता है, बच्चों तुम आत्म अभिमानी होके बैठो। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। तो पहले शूद्र संप्रदाय के थे, सभी शूद्र संप्रदाय के थे, भले कोई लौकिक में ब्राह्मण भी हो, लेकिन बाबा कहते सब शूद्र संप्रदाय के थे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। थे हम पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बने थे, अब फिर बन रहे हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम सतयुग के मालिक थे, सतयुग के मालिक नहीं, सतयुग में विश्व के मालिक थे। कई बार करेक्शन कराते ना बाबा, कई बार हम कह देते हम तो सतयुग के मालिक थे, परंतु सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो क्या थे? पारस बुद्धि थे। फिर आत्मा में खाद पड़ती है, मनुष्य समझते नहीं है, मनुष्य ये बात समझते नहीं है। बाप कहते हैं तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे, आत्मा में खाद पड़ी है, ये थोड़ी मनुष्य समझते हैं। वो तो यही समझते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, वो तो सदा ही पवित्र है। तो बाबा कहते हैं नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं तुम जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, एकदम अंधश्रद्धा थी, जो सुनाया बस वो, जो पढ़ा बस उसी को मान लिया, सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जानते नहीं है, न शिव को जानते हैं, न देवताओं को, कुछ भी जानते नहीं, और पूजा तो करते हैं, याद भी करते हैं, इसलिए ब्लाइंड फेथ। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वो कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। हमारा दैवी धर्म था, बाबा कहते ये भारतवासी नहीं जानते, इसीलिए दैवी धर्म से भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं, वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब वो देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल कर क्या नाम रख दिया धर्म का, हिंदू धर्म रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा कहते किसका दोष तो है नहीं, सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वो एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं, जन्म मरण रहित जरूर है, लेकिन क्या नहीं है शिव बाबा, ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, नाम भी है रूप भी है, वह जन्म मरण से न्यारा है। क्योंकि क्यों बाबा कहते नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। कोई भी चीज है तो उसका नाम भी होगा रूप भी होगा, लेकिन परमात्मा नाम रूप से न्यारा का मतलब है कोई भी साकारी नाम रूप से न्यारा है वो, इसीलिए साकारी नाम रूप उनका नहीं है तब कहते नाम रूप से न्यारा। तो ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है, आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। वैसे भी बिंदु की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ग्राफ के अंदर आप देखेंगे, हम यही पढ़ते थे, ग्राफ के अंदर बिंदु का बड़ा महत्व है, वो डॉट वो पॉइंट जहाँ से शुरू होती लाइन, पर उसका कोई डायमेंशन नहीं है, लंबाई चौड़ाई वो कुछ नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए, समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, बड़ा लिंगाकार रख करके पूजते हैं, समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। 84 लाख जन्म कहा, तो गपोड़ा हो गया ना, कितना बड़ा चढ़ा कर कह दिया, ये तो गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनना है, बार बार याद दिला रहे तुम ब्राह्मण बने हो तुम देवता, तुमको देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य तो शूद्र है, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्यु लोक क्या है, पतित दुनिया, नई दुनिया तो वो थी जहाँ ये देवी देवताएं राज्य करते थे, एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है, ये देवी देवता धर्म क्या हो गया है, प्राय लोप हो गया है। प्राय लोप क्यों कहते हैं, क्योंकि यादगार चित्र है परंतु वो धर्म नहीं है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, इसलिए जो इतिहास भी है वो केवल आधा कल्प का है, 2500 साल का ही है, उसके पहले क्या था वो कोई इतिहास भी नहीं है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको समझाते हैं, ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा नाम है, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। कैसे बनेगी अमर लोक का देवता? अमर कथा सुनकर। तो अमर कथा भी कहा जाता है, तुम इस नॉलेज से देवता बन अमर बनते हो। अमर का मतलब तुम काल पर जीत पाते हो। तुम अमर बनते हो, काल पर जीत पाते हो, वहां कभी भी काल खा नहीं सकता। मरने का वहां नाम ही नहीं है। अभी तुम काल पर जीत पा रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। हर चीज बाबा याद दिलाते ड्रामा प्लान अनुसार। हाँ, क्यों कैसे क्या ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। ड्रामा प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, 5-year plan तो बनाते हैं। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है। कौन सा? वो तो सरकारें 5 साल की योजना बनाते हैं। और भगवान के पास कौन सा प्लान है, कौन सी योजना है? भगवान के पास, बेहद के बाप के पास प्लान है राम राज्य बनाने का। वो तो बापू गांधी जी ने कहा राम राज्य बनाना है, लेकिन बना तो सके नहीं। लेकिन ये तो भगवान का ही प्लान है राम राज्य बनाना। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वो तो सब है मनुष्य। मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके, बापूजी नहीं कर सका, पर बापूजी का भी बापूजी बाबा कहते हैं वही राम राज्य स्थापन करते हैं। मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को, तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। दिन में देवी देवताओं का राज्य, फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है, उन देवताओं की पूजा होती है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है। ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, ये बाप समझाते हैं। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का? एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का वैराग्य, वो तो घरबार को छोड़ते हैं। वो घरबार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का संन्यास, वो भी केवल बुद्धि से, जाना कहीं नहीं है, केवल बुद्धि से सारे मृत्यु लोक का संन्यास करना है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है, क्या होना है भविष्य में। बाबा कहते हैं तो सब निश्चित ही, तो इसीलिए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है कि ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। जू मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो, अब बाबा ने क्या मिसाल दिया, समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। वो पूछेंगे भी हमको तो विदेश जाना है, वहां हम ये ज्ञान सुन सकते हैं, ज्ञान पढ़ सकते हैं। अब बाबा के समय तो कोई सेंटर नहीं थे, लेकिन कुछ गिने चुने भाई बहने थे लंदन में, खास हमारी चैंती बहन की लौकिक माता जी रजनी बहन, और उनके युगल मुरली दादा, तो वो तो लंदन में रहते थे, जयंती बहन भी लंदन में रहती थी, तो बाबा की मुरली जाती थी उनको लंदन में। और भी कुछ भाई बहने थे जो विदेशों में रहते थे और बाबा की मुरली उनको जाती थी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो समझो कोई विलायत जाते हैं कहेंगे वहाँ हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ कहाँ भी बैठ तुम ये नॉलेज पढ़ सकते हो। अभी तो कई कहते हैं ना उस देश में जाते हैं वहाँ सेंटर है, ऐसे नहीं कहते वहाँ पढ़ सकते हैं वहाँ सेंटर है। हम कहते हैं हाँ वहाँ भी सेंटर है, नशा है ना कि हमारे 140 देशों में सेवा केंद्र है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ उस देश में हमारा सेंटर है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज पढ़ सकते हैं, तो बाप कहते हैं हाँ कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो, इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ेगा, बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं, 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं, कौड़ी तुल्य बन गए हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने, फिर हीरे समान कैसे बने, अब कलयुग है फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स समझना है बस। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है, अभी है संगम, अभी है संगम युग, फिर सतयुग होना है। अभी हम कलयुगी विशेष बन गए हैं, कलयुगी विकारी बन गए हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस निर्विकारी कैसे बने, उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। कलयुगी विकारी से सतयुगी निर्विकारी कैसे बने, उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं। पुकारते भी है ना कलयुगी विकारी लोग, क्या पुकारते हैं, पुकारते भी है ना, हमारे में कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, हम पर तरस खाओ, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ इन देवताओं जैसा, जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है, दूसरे तो नहीं बनेंगे ना, जो कल्प पहले बने थे देवता उनको ही बनना है। तो बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, देवता तो बाद में बनेंगे, पहले अभी क्या समझना है खुद को, आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, हाँ कही आते हैं ना, कहते बहन जी जब मैं शुरू में ज्ञान में आया बहुत नशा था, बहुत उड़ता था, अभी पता नहीं, यहाँ खुशी खत्म हो गई है, खुशी खत्म हो गई है। तो क्यों खुशी खत्म हो गई, पहले तो बहुत अच्छा अच्छी अवस्था थी, अभी क्यों खुशी खत्म हो गई, तो इसका बाबा ने मूल कारण भी बताया था कल, देह अभिमान ज्यादा आ गया, पहले पता ही नहीं था देह अभिमान है, और बाबा के बने आत्माभिमानी बने खुशी हुई, फिर धीरे धीरे वो आत्माभिमानी भी भूल जाते, फिर वापस देह अभिमान आता है तो खुशी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बाबा याद दिलाते बार बार, आत्माभिमानी बनो तो खुशी में रहोगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, ऐसे नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, सदैव देही अभिमानी रहेंगे नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर का ही, शरीर के रहते हैं ना, नाम तो शरीर से ही वो बुलाएंगे ना, तो वहां पर नेचुरली आत्माभिमानी है, या बार बार देह अभिमानी बन जाते हैं, वहां पर देही अभिमानी बनने के लिए विशेष अभ्यास नहीं करना पड़ता, नेचुरली है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारा कारोबार चलता है वहां, जैसे यहाँ रानी का राज्य था तो सारा कारोबार रानी के नाम से ही चलता था ना, तो वहां भी लक्ष्मी नारायण के नाम से सारा कारोबार चलेगा। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है रूहानी यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है, बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसको ही पाप भस्म हो जाएंगे इस याद से। इसीलिए इस याद को क्या कहा जाता है, योग अग्नि, क्योंकि अग्नि में डालने से कुछ चीज भस्म होती है ना, तो योग अग्नि कहा जाता है। याद से तुम कहा, याद तो तुम कहां भी कर सकते हो, सात रोज में समझाना होता है। हाँ, फिर तो कहां भी जाकर आप ये याद कर सकते हो, सात रोज में समझाना होता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, अब फिर इस एक ही जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है, ये स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। और दादी जानकी जी को ये ड्यूटी दी थी साकार बाबा ने, कैसे जो भी विदेश में बाबा के बच्चे थे उनके पत्र तो आते थे, तो दादी जानकी उनका जवाब देती थी, पत्र जवाब का जवाब देती थी। हाँ, मुझे भी याद है एक बार कैसे, क्योंकि दादी बड़ी दादी भी जानकी दादी को ही भेजती थी वो पत्र कि आप इनको जवाब दो। तो मुझे याद है एक बार दादी जानकी मधुबन में आई थी तो ढेर सारे विदेश के पत्र थे, तो दादी ने मुझे बुलाया, क्योंकि इंग्लिश में लिखना होता था, तो फिर इंग्लिश में दादी ने मुझे जो कहा उसका इंग्लिश करके उनको पत्र लिखा। उस समय ईमेल तो कुछ थे नहीं, व्हाट्सएप ईमेल ये तो कुछ भी नहीं था, तो पत्र लिखते थे। तो इसलिए दादी जानकी को देखो, शुरू से ही बाबा ने भी मुकरर किया विदेश की सेवा का। तो बाबा कहते हैं ये स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। सहर गीता का राजयोग, लेकिन किसने सिखाया, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर से देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कहा तो प्रजा का पिता है तो मनुष्य ही ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ भी बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है, हम सो सो हम, बाबा ने बहुत सहज रीति अर्थ समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए हम सो आत्मा सो परमात्मा ये कह देने से क्या समझ लिया है, इसीलिए फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, सब में आत्मा है तो सब में परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो बाप कहते हैं सब में व्यापक तो आत्मा है, परमात्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर हो गया। सब में व्यापक तो आत्मा है, मैं कैसे व्यापक हूंगा, स्वयं भगवान कहते मैं कैसे व्यापक हूंगा, तुम तो मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ, तो मैं सब में व्यापक हूँ फिर बुलाते क्यों, हे पतित पावन आओ बुलाते हो हमको तो, हमको आके पावन बनाओ ये भी कहते हो। तो निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है, हर एक अकाल मूरत आत्मा का तख्त ये है। बाबा भ्रकुटी पर इशारा करते हैं, हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये है। तख्त कहो अथवा रथ कहो, आत्मा का ये रथ है शरीर। बाप को तो रथ है नहीं, अपना रथ नहीं है, वो निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है शिव बाबा को। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके, इसीलिए श्री कृष्ण को तो अपना रथ था ही नहीं ना, वो तो अर्जुन का रथ लिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं रथ चलाऊंगा तुम्हारा सारथी बन करके, युद्ध तुमको करना है। तो अर्जुन के रथ में बैठा, तो बाबा कहते बाप को तो रथ है नहीं, वो निराकार ही गाया जाता है, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके, वो निराकार है तो उसको रथ चाहिए बोलने लिए, तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाए? तो बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, इनके रथ का लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है, टेम्पररी है ये लोन। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान ही नहीं सकता इस समय, कोई नॉलेज नहीं जान सकता। तो क्या हो गए हैं सब? बाबा कहते हैं इस समय सब नास्तिक है, क्योंकि इस नॉलेज को जानते ही नहीं है, न खुद को जानते न भगवान को जानते, सब नास्तिक है। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर इतना ऊंच पद पाते हो। बाबा बार बार याद दिला रहे, तुम क्या बनते हो इस ज्ञान से, इतना ऊंच पद पाते हो इस ज्ञान से। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके, वो सब गुरु है भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उसको कहा ही जाता है। उस सतगुरु के लिए क्या कहते हैं? वाह सतगुरु वाह, वाह सतगुरु वाह। इसको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वो सब तो है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती है, कितनी बार भी गीता पढ़ लो परंतु की प्राप्ति तो नहीं होगी, कोई देवता तो नहीं बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है, अगर ये पद पाना है तो इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। कैसे बनेंगे देवता? पवित्र बनेंगे तब तो देवता बनेंगे। बाप की याद में रहना, एक तो पवित्र बनना, दूसरा बाबा की याद में रहना, बी होली बी योगी, ये शुरू से ही बाबा ने ये मंत्र दिया था। बाप की याद में रहना और पवित्र बनना, इसी में ही माया विघ्न डालती है। माया भी कम नहीं है, विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज तो सब बच्चों के पास जाती है। कैसे जाती है? मुरली के द्वारा। ये सब बच्चों के पास जाती है, कभी भी मुरली मिस न हो। आज बाबा ने फिर से जोर दिया, कभी भी मुरली मिस न हो। हाँ, ऐसा कोई है जो जो कहे कि मैंने एक दिन भी कभी मुरली मिस नहीं की है, वो हाथ उठाओ। है? अच्छा, वेरी गुड, सब नहीं उठा रहे, माना कभी कभी मिस करते होंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, एक दिन भी मुरली नहीं मिस की। तो बाबा कहते कभी भी मुरली मिस न हो। मुरली मिस हुई तो क्या कहेंगे इसको, गोया एब्सेंट पड़ जाती है। अब क्लास में एब्सेंट हुए तो उसके वो तो उनको पास भी नहीं करेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा टाइम तो एब्सेंट ही रहा तो क्या पास करेंगे, वो पढ़ाई भी क्या करेगा। तो बाबा कहते हैं मुरली से कभी भी मुरली मिस न हो, मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, श्री मत पर चलना पड़े। बस ऐसे नहीं केवल मुरली पड़ी, पर जो मुरली में है बाबा की श्रीमत उस पर चलना भी पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं, पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। अब कई भाई बहने कहते विदेश तो जाना है, पता नहीं वहां वेजिटेरियन कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको बहुत संकल्प चलते हैं। तो फिर कई तो हमने देखा जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं, ठेपले खूब बना के लेके जाते हैं, बाकी तो और कुछ इतना नहीं चलेगा तो वही बना के ले जाते हैं ना। तो इतने दिन 10-15 दिन हमको विदेश में रहना है। तो बाबा कहते हैं पवित्र भी बनना है और वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो वैष्णव कहलाते जो वल्लभाचारी भी होते हैं, पक्के वल्लभाचारी, कट्टर वल्लभाचारी होते हैं। इतने वैष्णव होते थे पहले वल्लभाचारी, किसने छू भी लिया ना उनको तो भी जाकर के स्नान करते थे, और जब खाते भी थे ना किसकी दृष्टि भी ना पड़े, नजर भी ना पड़े। तो ऐसे भी पक्के वैष्णव वल्लभाचारी होते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं, विकार में तो जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। हम ऐसे वैष्णव हैं जो पवित्र बन विष्णु वंशी बनते, विष्णु वंशी के नाम से ही तो ये वैष्णव शब्द आया है ना। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक, यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुमको मिलता है। ये भी कितना बड़ा राज है ड्रामा में। अमेरिका और रशिया कभी एक नहीं हुए, हमेशा दोनों एक दो के दुश्मन। तो बाबा कहते हैं मक्खन बीच में तुमको मिलता है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है, छोटे बच्चों का भी हक है। आज बाबा ने छोटे बच्चों को बहुत याद किया है। जब बाबा की ये मुरली चली तो मुझे याद है, हाँ, बाबा की मुरली सुनकर हमारे निर्वैर भाई को ये ख्याल आया। उस समय मैं समझती हूँ 85 होगा, तो उस समय ख्याल आया कि बच्चों के प्रोग्राम क्यों नहीं होते हैं मधुबन में, बच्चों के प्रोग्राम भी होने चाहिए। तो खास निर्वैर भाई की प्रेरणा से बच्चों का प्रोग्राम रखा मधुबन में। तो दादी ने कहा बच्चे छोटे छोटे आएंगे, इतना तंग करेंगे, इतना आवाज करेंगे, ये करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, केवल बच्चों को बुलाएंगे। तो लेकिन फिर मीटिंग हुई तो कहा कि हाँ बच्चों का प्रोग्राम करना है। तो फिर उसके लिए निमित्त बनाया हमारी हरीश भाई को, हरीश शुक्ल जो भावना बहन के लौकिक पिताजी अहमदाबाद में रहते थे, और खास और चोकसी भाई, चोकसी भाई भी गुजरात के ही है, पेटलाद के थे। तो दोनों को निमित्त बनाया और यहाँ बच्चों का प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा। तब तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ भी नहीं था, तो यहाँ बच्चों का प्रोग्राम रखा था तो बहुत। उसके बाद तो हर साल बच्चों का प्रोग्राम होता है ना। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने लोग छोटे बच्चों को याद किया है, छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे तो है ना, वो भी, उनको भी हक है। तो सबका हक है, सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो। अभी तो हमने देखा है कितने छोटे छोटे बच्चों का वो टीवी पर इंटरव्यू आता है, हाँ वो क्या क्या सुनाते, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। 60 साल की आयु और 8 साल से ज्ञान में हूँ। वे 8 साल से ज्ञान में कैसे हो, गर्भ में ही ज्ञान ले लिया, ऐसे भी बच्चे सुनाते हैं, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो वो तो सेकेंड बर्थ ब्राह्मण बाबा के बच्चे ही थे, फिर शरीर छोड़ा, फिर वो बच्चे बने, तो इतना ऊंचा ज्ञान वो भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको कहना अपने को आत्मा समझो, माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई, एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें सिर्फ इसमें किताब आदि की तो दरकार ही नहीं है, बस बाबा की मुरली इनफ है। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है, योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व के मालिक बन रहे हो, बाप राज योग सिखाकर पावन बनाते हैं, वो है हठ योग और ये है राज योग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, हाँ खान पान की परहेज चाहिए और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद भी बहुत जरूरी है। इसको कहा जाता है सहज राज योग, राजाई प्राप्त करने के लिए सहज राज योग। अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे, श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है इसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सतयुग को सुख धाम। अभी ये है दुख धाम और जहाँ से हम आत्माएं आई है वो है शांति धाम। तो शिव बाबा को वंडर लगता है, कई बातें ऐसे दुनिया में जिसके लिए शिव बाबा को वंडर लगता है। क्या दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, भगवान को भी वंडर लगता है। बाबा ने ये क्यों कहा, उस समय ये फैमिली प्लानिंग का बहुत चल रहा था, तो बच्चे पैदा न हो, बच्चे कम हो, बच्चे कम हो, उसके लिए क्या क्या करते थे। तो बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं कि ये तो बाप का ही काम है, ये तो भगवान का ही काम है कि पॉपुलेशन को इतना कम कर देंगे जो केवल 9 लाख ही होगा सतयुग में, ये तो भगवान का ही काम है, मनुष्य नहीं कर सकते जनसंख्या को कम। तो बच्चे कम पैदा हो इसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं ये तो बाप का ही काम है। बाप झट कैसे जनसंख्या कम कर देते हैं, बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं, सबसे सहज तरीका जनसंख्या कम करने का। तो एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं, एक धक से ही विनाश सबका। वो लोग तो कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं कि पैदाइश कम हो, हाँ पैदाइश कम करने लिए क्या क्या दवाइयां लेते हैं। बाप के पास तो एक ही दवाई है, कौन सी दवाई है बाबा के पास पैदाइश कम करने की, एक धर्म की स्थापना होनी है बस, ये पैदाइश कम करने की बड़ी योजना भगवान के पास है। एक धर्म की स्थापना होनी है, वो समय आएगा क्या जो सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, ये तो पवित्र बन रहे, पवित्रता से तो ऑटोमेटिकली कम हो गई नारायण रचना, तो सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। जब रहते ही ब्रह्मचर्य में है तो फिर दवाई खाएं और बच्चे पैदा ना करें इसकी क्या जरूरत है, तो फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तो तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दे दी है, हाँ कौन सी दवाई, मन मना भव की ऐसी दवाई दे दी है जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। और वहां तो कितनी जनसंख्या कम होगी, 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री मत पर जरूर चलना है। दूसरा, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है, कहां भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। पहले स्व कल्याण, हाँ बाबा ने कहा ना चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग सबसे ज्यादा जो आजकल सुनने में आती है, मृत्यु, हाँ, जिसमें यंग कैसे हार्ट फेल से मर जाते, अभी 30-35 साल का और हार्ट फेल हो गया और मर गया। तो जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में हार्ट फेल किसको कहेंगे, आध्यात्मिक उन्नति में हार्ट फेल दिल शिकस्त का रोग होता है। दिल शिकस्त हो गए, हाँ खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, तो जैसे दिल शिकस्त हो गए, ये जैसे हार्ट फेल हो गए। दीदी, बड़ी दीदी को ये हार्ट फेल शब्द बहुत बहुत याद था। जब भी कोई बात होती थी, हार्ट फेल क्यों होती हो, हार्ट फेल क्यों होती हो, मना दिल शिकस्त क्यों होती हो, तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, आप देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ, विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, जो बोलते हो वो आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना यही है रिगार्ड देना, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना यही है रिगार्ड देना। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ के अंतर्गत कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहां तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा, संगठन, प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा और थोड़ा आज से डबल विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। काफी सारे विदेशी भाई बहनें आ गए हैं ज्ञान सरोवर में, यहाँ भी आ गए हैं। डबल फॉरेनर्स रेज योर हैंड, और डबल फॉरेनर्स रेज योर हैंड। ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर प्रोग्राम इज स्टार्टिंग दिस मॉर्निंग एट 9:30 to 10:30 AM देयर इज पर्सनल मीटिंग विद सिस्टर दीप्ति, सिस्टर दीप्ति ऑफ साउथ अफ्रीका, पर्सनल मीटिंग विद सिस्टर दीप्ति इन डबल फॉरेनर्स सपोर्ट ऑफिस, कॉन्फ्रेंस ऑफिस। सो डबल फॉरेनर्स कैन गो देयर एंड सिस्टर दीप्ति विल मीट द डबल फॉरेनर्स। देन 11 to 12 noon सिस्टर दीप्ति इज गोइंग टू मीट दोज फ्रॉम मलेशिया इन हारमनी हाउस मीटिंग रूम, Harmony House meeting room. Sister Dipti will meet all those from Malaysia in Gyan Sarovar Harmony House, 11 to 12 noon. Then this evening, 5 to 6 p.m., Sudesh Didi is meeting first-timers and all new arrivals in Dadi's cottage upstairs. So I don't think y'all have met Sudesh Didi. She just arrived. She was in Spain. So she arrived. And today she is meeting at 5 o'clock all the first timers and all the new arrivals in Dadi's cottage upstairs of Gyan Sarovar. Then 6 to 7:30 p.m. meditation with Gyan Sarovar Nivasis in the meditation hall of Gyan Sarovar. And all the new arrivals, I'm sure you have filled your government form and got your badge. So please wear your badge because you will be asked at the gate if you don't have the badge on. Om Shanti.
Om Shanti. Aaj Satgurwar hai. Hum sab प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वह सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी और 1 लाइन डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के। डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्लीज रेज योर हैंड। और ठीक है, एंड टीचर्स, मैंने जो भी टीचर्स मैंने शांतिवन से आए हैं या यहाँ पर है, तो टीचर्स मैंने और डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल टेक नेक्टर फ्रॉम शिलुबेन फ्रॉम दिस साइड where this camera is there, next to the camera, this side, और बाकी जो होंगी 2 लाइनें अन्य बहनों की होंगी अमृत के लिए, 4 लाइनें होंगी, 1 लाइन भाइयों की और 1 लाइन, 1 लाइन for double foreign sisters and brothers और साथ में teachers बहनें। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से आए एक रात के लिए हाथ खड़ा करें। अच्छा, और जो सुबह सुबह आए हैं मुरली सुनने के लिए हाथ खड़ा करें। अच्छा, वेलकम। बाबा तो बहुत प्यार से सबका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कुछ ना कुछ तोड़फोड़ चल रही है, उसके लिए जब आप चलते हैं आराम से चलें और पांडव भवन में भी किचन तरफ काम चल रहा है, इसलिए सबके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। किसी को भी नीचे नहीं बैठना है। कभी कभी क्योंकि आदत है पहले नीचे बैठ जाते थे, नीचे भी जो डाइनिंग हॉल है वहां पर भी कारोबार चल रहा, मिस रोटी बनती है, स्थान नहीं है, इसलिए सबको जो भी पार्टी वाले आए हुए हैं सबको ऊपर के डाइनिंग हॉल में ही जाकर के नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन करना है। इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो वहां पर एक भाई की ड्यूटी लगा देंगे कि सबको वहां लिफ्ट भी है, जो नहीं चढ़ सकते हैं लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहां जो भाई होंगे वो ड्यूटी पर रहेंगे, आप सबको ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही भेजेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर से हम याद कर रहे हैं अपने प्यारे बाबा को, आज का दिन तो हम सब बाबा की यादों में खो जाते हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं और बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो उसी प्यार से भावना से हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और जैसा कि आपको बताया कि चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, वन लाइन फॉर ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स दिस ब्रदर्स साइड, एंड बाकी दो लाइनें जो होंगी वो अन्य बहनों की होंगी, और टीचर्स बहनें भी डबल फॉरेनर्स के पीछे आ जाएंगी अमृत के लिए। ओम शांति।
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबके स्नेह भरे यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची बाबा के पास अनेक बच्चे थे। बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि और हर एक बच्चे के स्नेह की भावना का रिटर्न दे रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा ने बच्चों से पूछा, जैसे बाप अपने बच्चों का समाचार लेता है, ऐसे बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे आपका सारा, क्योंकि तुम बच्चे बाप के साथ विश्व के निर्माता के साथी हो, तो हर एक बच्चे का अपना अपना कार्य ठीक चल रहा है? तो सब बच्चे कहते, हाँ बाबा मेरा ठीक चल रहा है। कुछ कहते, बाबा हमने ऐसे ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ कहते, बाबा हमने नई दुनिया में बनाने के जो नए प्लान्स हैं वह भी हम बना रहे हैं। और कुछ कहते हैं हम संपन्नता की स्टेज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने जैसे चार्ट कहा कि सब बच्चे अपना चार्ट दिखाओ। हर एक बच्चे के पास एक बहुत बड़ा पेपर था और पेपर पे हर एक के प्लान, अपनी अवस्था, वो सारा लिखा हुआ था और उसका स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो जैसे वो बाबा के पास लेकर आते थे, तो जिन्होंने नए नए प्लान बनाए थे, मैं ये करूँगा ये करूँगा, वो प्लान का पेपर बिल्कुल प्लेन हो गया। तो बाबा को कहते, बाबा हमने तो ये बनाया था। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। और दूसरे ऐसे थे जो ऐसे बस बाहरी दिखावा के लिए थे, उनके पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे गोल गोल सर्कल बनते जा रहे थे, वास्तविकता क्या है वो दिखाई नहीं दे रही थी। और तीसरे ऐसे थे, बहुत कम एक आध होगा, जिसके अंदर विशेष भविष्य दुनिया के जो नजारे, जो स्थिति होनी चाहिए, उसके छोटे छोटे ऐसी बिंदी लगी हुई थी, उस बिंदी में निशान दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, फिर से ध्यान से देखो। जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, तो उन प्लान्स में बाबा ने कहा कि सो स्थिति और बाप की प्रत्यक्षता का वो स्वरूप नहीं है। प्लान बहुत बना देते हैं, और लेकिन ये हो कि अपनी स्थिति को इतना पावरफुल और ऐसा बनाना है जिसमें बाप की प्रत्यक्षता और नई दुनिया की जो बाबा ने कार्य की जिम्मेवारी दी है उसकी अनुभूति नहीं दिखा रही है। दूसरी बात, बाबा ने कहा, सब बच्चे पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी निमित्त निर्माण भाव की कमी है। कराने वाला बाबा है, करा रहा है बाबा, करण करावन को भूल करके इस समिति में आ जाते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सबसे श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, सदा श्रेष्ठ करना है, लेकिन करावन हार की समिति जो है वो कभी कभी बच्चों को भूल जाती है। फिर तीसरा, फिर बाबा ने क्या दिखाया कि जो डॉट डॉट दिखाया था, उस डॉट के अंदर बाबा ने कहा कि बाबा मेरा साथी, और उस डॉट में हर समय हर कार्य करने के बाद उसको फुल स्टॉप और पास्ट की बातों को पास्ट करने का जो
अब अनुभव हो जाता है, स्थिति बन जाती है, तो न्यारे और प्यारे हर कार्य करते समय सफलता और हल्कापन होता है। फिर दूसरे रूप में क्या देखती हूँ कि टीचर के रूप में आज बाबा खड़े थे, आज तो बाबा का रूप भी थोड़ा स्थित दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा बाप के रूप में तो इतना प्यार और शिक्षा सावधानी दे रहे हैं, लेकिन अभी बाप का जो पार्ट है, एक तो टीचर के रूप में भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हर एक बच्चे को अपनी संपन्नता, संपूर्णता और बाप की प्रत्यक्षता के लिए विशेष ध्यान देना है। नहीं तो बाप टीचर को लगता है कि टीचर इतना पढ़ा रहे, इतना सिखा रहे हैं, फिर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं कि टीचर के रूप में बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा पास हो और पास हुए ऑनर बने, हमेशा टीचर की यही ध्यान रहता है। बाबा ने कहा अभी तीसरे पार्ट के लिए बाबा अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली ही आना है, समय ऐसा आ रहा है कि तीसरा पार्ट जो है, एक तरफ बाप की प्रत्यक्षता और दूसरी तरफ धर्मराज का जो पार्ट है, वो समय आने पर किसी को कहे बिना ही वो स्वतः ही आएगा। तो इसलिए तीनों बातों को ध्यान रखकर ही बच्चों को विशेष बाबा ने जो दिया है उसके ऊपर विशेष ध्यान, और टीचर का रूप भी समय आने पर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी तो टीचर के रूप में बाबा बच्चों की तरफदारी भी कर लेते हैं, लेकिन आगे चल करके हर एक अपने पुरुषार्थ का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर उसका रिजल्ट जब निकलेगा तो बच्चे खुद ही उसका अनुभव करेंगे। फिर बाबा फिर से बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, और बाबा ने प्यार करते फिर से याद दिलाया कि बच्चे जब से बाबा के बने हो, बाबा ने बच्चों को दिल में समाया, तो बच्चों को भी बाप को दिल में समा करके बाबा ने जो कार्य दिया है, एक तो संपन्न बनना है, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता, और तीसरा पास विद ऑनर, ऐसे रहे जो कि किसी को लास्ट में सोचना न पड़े या कोई संकल्प चले कि ये क्या हो रहा है। तो फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, और जैसे मैंने बाबा के सामने भोग रखा तो बाबा भोग स्वीकार किया, लेकिन बाबा ने कहा आज बच्चों को बाबा भोग स्वीकार कराते हैं, स्वीकार कराने के साथ साथ बच्चों को एक प्रॉमिस भी कराते हैं। बच्चे सदा ये पक्का रखें, हम कभी भी इधर उधर की बातों में न जा करके बाप को अपना साथी बना करके बाबा के कार्य में अपने को संपन्न और बाप की प्रत्यक्षता और साथ साथ ऐसा प्यार सब विश्व के सामने प्यार की किरणें, ताकि उनको भी लगे कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और नई दुनिया आने वाली। तो बाबा ने फिर सबको कहा कि भोग से पहले बाबा बच्चों को एक होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क के साथ हर एक बच्चे को अपने अपने पास या अपने साथ ही प्रॉमिस और प्रॉमिस के साथ पुरुषार्थ भी करना है। फिर सब बच्चे कहते बाबा हम कर रहे हैं, करेंगे। तो बाबा ने कहा सदा इसी तरह से सफल होके आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया, और फिर जिनके याद प्यार भोग था बाबा को दिया, बाबा ने रिटर्न में भी उनको याद प्यार दिया। ओम शांति।